दिन भर 8 फरवरी दिन गुरुवार, सभी सुनने वालों को कुलदीप मिश्र का नमस्कार। बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की सजा, क्या होंगे असर?
अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, मुझे लगता है कि शायद बीएनपी को इस बात का फायदा हो कि उनकी जो नेत्री हैं वो जेल में हैं।
बीबीसी से खास बातचीत में 2019 के चुनावों पर क्या बोले राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट?
हमें लग रहा है कि 19 में जो चुनाव होंगे उसमें एक रेनबो कोलिशन बनेगा, कांग्रेस के नेतृत्व में लाइक माइंडेड पार्टी साथ में आएंगी।
और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ जमीन कब्जाने के मामले में FIR।
कुल जमीन 1 एकड़ 20 डिसमिल है, सभी लोग बंदर बात किए हुए हैं, गिरिराज सिंह के कब्जे में है 3.5 कट्ठा।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। 72 साल की खालिदा पर अनाथ बच्चों के लिए दुनिया भर में जमा किए गए 1,61,00,000 रुपए के दुरुपयोग का मामला चल रहा था, जिसमें अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। फैसले के तुरंत बाद खालिदा जिया को जेल भेज दिया गया है। इस मामले में खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और जिया के 4 सहयोगियों को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के आगे आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की ये बेंच एक साथ 13 याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। मामले में चीफ जस्टिस ने कुल 42 किताबों का अनुवाद 2 सप्ताह के भीतर अदालत में जमा करने का निर्देश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। सीरिया सरकार ने राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में स्थित घूटा के सरकार की घेराबंदी वाले पूर्वी इलाके में विद्रोहियों के ठिकानों पर 4th दिन हवाई हमले किए हैं। सीरिया संकट पर नजर रखने वालों का कहना है कि हमले में 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। एक अनुमान के अनुसार पूर्वी घूटा में सरकारी घेराबंदी वाले इलाके में करीब 4 लाख लोग रहते हैं और घेराबंदी के कारण यहाँ लोगों तक खाना और दवाएं नहीं पहुँच पा रहा है। एक स्थानीय निवासी खालिद शेख अल-तबख ने कहा कि लोग इन हमलों से थक गए हैं और चाहते हैं कि वो अब चैन से रहें।
نحن نطالب بإيقاف القصف على المدينة مو لشهر.
हम चाहते हैं कि शहर पर बम गिराना बंद कर दिया जाए और ये केवल 1 महीने के लिए ना हो। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि 1 महीने के लिए शहर पर बम गिराना बंद हो, लड़ाई बंद हो, लेकिन हम चाहते हैं कि खून के इस खेल का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। घूटा में नागरिकों की मौत हो रही है। कल मेरे एक भाई की पत्नी और बेटों की मौत हो गई। मेरे भाई ने उनके शवों को अपने हाथ में उठाया। ईश्वर गवाह है, उन्होंने खून को अपने हाथों में समेटा था। घूटा के निवासी खालिद शेख अल-तबख के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि वो फिलीपींस में नशीली दवाओं के कारोबारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान हुए अपराधों की जांच करेगी। फिलीपींस के नेता रोड्रिगो ड्यूटर्टे पर नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े हजारों संदिग्धों को मारने के आदेश देने का आरोप लगा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अभियोजक फातू बिनसौदा ने कहा कि कोर्ट ड्यूटर्टे के सत्ता में आने के बाद से ड्रग कारोबारियों की हुई हत्याओं की रिपोर्ट्स की जांच करेगी।
The preliminary examination of the situation in the Philippines will analyze crimes allegedly committed in this.
शुरुआती जांच में जुलाई 2016 में ड्रग्स के खिलाफ सरकार के छेड़े गए इस अभियान के दौरान हुए कथित अपराधों की जांच की जाएगी। आरोपों के मुताबिक जुलाई 2016 में अवैध ड्रग्स के खिलाफ इस अभियान के दौरान हजारों लोगों को उनकी कथित संलिप्तता के कारण मारा गया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अभियोजक फातू बिनसौदा के शब्द। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन जल्द ही विंटर ओलंपिक के लिए उत्तर कोरिया से आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने वाले हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में उत्तर कोरियाई लीडर किम जोंग उन की बहन शामिल हैं। दक्षिण कोरिया के गृह मंत्रालय का कहना है कि इस दौरान संयुक्त उत्तर दक्षिण औद्योगिक पार्क को दोबारा खोलने जैसे मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी और दक्षिण कोरिया की दिलचस्पी सुरक्षा और परमाणु हथियारों से संबंधित मामलों पर चर्चा करने की है। उनका कहना है कि उत्तर कोरिया में मौजूद नेशनल पार्क में पर्यटक जा सकें, इसके लिए इन मुद्दों पर सबसे पहले बात करना बेहद जरूरी है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की दूसरी सभा दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं कुलदीप मिश्र। शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से जो आई है पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से। बांग्लादेश में विपक्ष की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में अदालत ने 5 साल कैद की सजा सुनाई है। बांग्लादेश की सियासत में 2 ध्रुव हैं, एक मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना का और दूसरा खालिदा जिया का। खालिदा जिया को जेल ले जाए जाने के साथ उनके समर्थकों की पुलिस से हिंसक झड़पें भी हुई हैं। ब्यौरा सुनिए फैसल मोहम्मद अली से।
अदालत का फैसला पूर्व प्रधानमंत्री के जरिए बच्चों के एक चैरिटेबल ट्रस्ट के फंड घोटाले का है। खालिदा जिया ने इस मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। सरकारी वकील मुशर्रफ हुसैन काजल ने फैसला सुनाए जाने के बाद मीडिया से कहा,
तारा बार बार यही मामला एजहार के चैलेंज करेछिलेन एवं चूड़ान्त भावे यही मामला होबे ना चलबे ना क्वाश बेंचे तारा गियेछिलेन।
उन लोगों ने इस मामले को बार बार चैलेंज किया है लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि इस केस को सुन रही अदालत सबूत के आधार पर ही फैसला सुनाएगी। इसी वजह से इस केस में 32 लोगों की गवाही हुई। सामाजिक मर्यादा, स्वास्थ्य और उम्र को देखते हुए माननीय अदालत ने उन्हें 5 साल की सजा सुनाई है।
फैसला सुनाए जाने के बाद पुलिस ने बांग्लादेश की नेता को अपने कब्जे में ले लिया। जेल ले जाए जाते वक्त जिया ने रोते बिलखते समर्थकों से कहा कि वो चिंता ना करें और धैर्य के साथ अपना काम करते रहें। आज के फैसले का मतलब होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री इसी साल होने वाले आम चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगी। 72 साल की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता के खिलाफ दूसरे मामले भी अदालत में चल रहे हैं। चिल्ड्रन ट्रस्ट को अंतर्राष्ट्रीय दानकर्ताओं से मिले फंड के घोटाले के मामले में ही जिया के बेटे को 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। हालांकि जिया के बेटे फिलहाल लंदन में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री के 4 सहयोगियों को भी इसी मामले में सजा सुनाई गई है। अदालत का फैसला आने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के समर्थकों और पुलिस के बीच हाथापाई और हंगामों की खबरें हैं। इस हिंसा में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रशासन ने पहले से ही राजधानी ढाका और मुल्क के कई शहरों में नाकेबंदी कड़ी कर दी थी। कई जगह अतिरिक्त पुलिस बल की टुकड़ियाँ भी लगाई गई थीं। बावजूद उसके आज पुलिस को भीड़ को नियंत्रण में लेने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। उधर 3 अवामी लीग के समर्थक खुश दिखे। बीएनपी के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने बीबीसी बांग्ला के एक सवाल के जवाब में कहा कि वो हमेशा से कहते रहे हैं कि ये एक झूठा मुकदमा है। इस पूरे मामले का लक्ष्य है उन्हें राजनीति से दूर रखना। जिया के वकील महबूबुद्दीन खोखोन ने कहा है,
बेगम खालिया संपूर्ण निर्दोष, मिथ्या जालिया जाल जालिया पूर्ण डॉक्यूमेंट के माध्यम में ताकि सजा दा होए से।
वो पूरी तरह से निर्दोष हैं, उनको जाली कागजातों के आधार पर सजा सुनाई गई है। हम लोगों ने सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है, उसके मिलने के बाद हम रविवार या फिर सोमवार को अपील करेंगे।
इस केस में जांच साल 2009 में शुरू हुई थी पर केस में चार्जशीट साल 2014 में दाखिल की गई। 1991 में 20 साल बाद देश में हुए चुनाव में जीत कर खालिदा जिया बांग्लादेश में सत्तासीन होने वाली देश की पहली प्रमुख बनी थीं। वो देश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पत्नी हैं मगर उनका पूरा राजनीतिक करियर विवादों से घिरा रहा है और उन पर बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार डेली स्टार ने कहा है कि वो देश की पहली प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अदालत ने दोषी पाया है और जेल की सजा सुनाई है।
फैसल मोहम्मद अली से ब्यौरा सुन रहे थे आप। इसी साल बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं और उससे पहले ये घटना वहाँ की सियासत को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकती है। इसके क्या असर हो सकते हैं मैंने पूछा वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण से।
बहुत ही अहम फैसला इसलिए है क्योंकि अगर बेगम खालिदा जिया 5 साल के लिए जेल में है तो वो दिसंबर में होने वाले चुनाव में भाग नहीं ले सकती है, नहीं अपनी पार्टी को लीड कर पाएंगी। उनका लड़का जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है तारिक रहमान, उनको भी 10 साल की सजा हुई है, हालांकि वो लंदन में है, वो लंदन से पार्टी चलाएंगे। तो ये बीएनपी के लिए एक झटका जरूर है। लेकिन अगर हम सोचें कि अगर अवामी लीग के लिए शेख हसीना के लिए बहुत आसान हो जाएगा इलेक्शन जीतना, ये बात भी सही नहीं है। अगर वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो अभी अवामी लीग के चांसेस बहुत अच्छे नहीं है। पूरे देश में अशांति का माहौल है, डेमोक्रेटिक स्पेस श्रिंक कर गया है। पिछले इलेक्शन में भी आपको याद होगा कि जातीय संसद की 300 सीटें हैं, उनमें से 158 सीटें अनकॉन्टेस्टेड जीती थी अवामी लीग क्योंकि बीएनपी ने हिस्सा नहीं लिया था। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा मुझे लगता है कि शायद बीएनपी को इस बात का फायदा हो कि उनकी जो नेत्री हैं वो जेल में है।
जो खालिदा जिया बनाम शेख हसीना की जो सियासत वहाँ चला करती है और अब जो ये घटना हुई है उनको सजा हुई है, तो भारत की डिप्लोमेसी के लिहाज से इस घटना की क्या कुछ अहमियत हो सकती है?
देखिए, भारत के बीएनपी से अच्छे रिश्ते नहीं रहे हैं। भारत का रिश्ता तो अवामी लीग से बहुत अच्छा रहा है। जब से शेख हसीना आई हैं, उन्होंने वही किया है जो भारत के हित में है। तो भारत तो यही चाहेगा शायद कि शेख हसीना जीते, लेकिन भारत सरकार तो वहाँ वोट देने जाएगी नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि शायद भारत सरकार को अपने बीएनपी के साथ रिश्ते सुधारने चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि बीएनपी ऐसे रास्ते पे आए कि वो बांग्लादेश में जो मर्जी करे लेकिन भारत के हितों की रक्षा करे।
ये जो बात बार बार कही जाती है कि खालिदा जिया जमात के ज्यादा करीब हैं, जो वहाँ की कट्टरपंथी ताकतें हैं उनसे उनके अच्छे रिश्ते हैं, क्या बाद के दिनों में कुछ समीकरण बदले हैं कि वैसे ही हैं? अभी मौजूदा समीकरण कैसे हैं इस लिहाज से अगर देखें?
देखिए, ये सीधा वोटों का खेल है। 32-33% वोट बीएनपी का है, 37-38% वोट अवामी लीग का रहा है पारंपरिक तौर से, और जमात का रहा है 8-9%। जब बीएनपी जमात के साथ हाथ मिलाती है तो वो अवामी लीग को हरा सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जमात इस्लामी प्रो पाकिस्तान पार्टी है और जब वो बीएनपी के साथ जब भी सरकार में आती है वो भारत के खिलाफ काम करती है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि बीएनपी का जमात के साथ जाना आइडियोलॉजिकल कंपल्शन नहीं है, इलेक्टोरल कंपल्शन है।
वरिष्ठ पत्रकार भारत भूषण को सुन रहे थे आप।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
अब बात भारत की। केंद्रीय मंत्री और बिहार के नवादा से भाजपा सांसद गिरिराज सिंह के खिलाफ जमीन कब्जाने के एक मामले में पटना में एफआईआर दर्ज की गई है। उधर राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उनसे पूछा है कि क्या वे अब नैतिकता के हवाले से भाजपा से गठबंधन तोड़ लेंगे। पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित 33 लोगों के खिलाफ पटना व्यवहार न्यायालय के आदेश पर जमीन फर्जीवाड़े को लेकर दानापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। गिरिराज सिंह केंद्र सरकार में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग में राज्य मंत्री हैं। दर्ज मामले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम की धारा भी शामिल है। यह मामला दानापुर के राम नारायण प्रसाद ने दर्ज कराया है।
हमारा खदियानी जमीन है, खदियानी जमीन के लोग अवैध रूप से ले लिए हैं। जवाबी कैंसिल करने के लिए कोर्ट जाना पड़ा, ना थाना में कोई केस नहीं दे रहा था। फुल जमीन 1-20 डिसमिल है, सभी लोग बंदर बात किए हुए हैं। 11-12 आदमी मिलकर गिरिराज सिंह के कब्जे में है। 3.5 कट्ठा, 2 कट्ठा और 1.5 कट्ठा, 3.5 कट्ठा।
एफआईआर 2 फरवरी को ही दर्ज कराई गई थी, लेकिन यह मामला कल तब सुर्खियों में आया जब बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता और सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस मामले पर ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। इस मुद्दे पर उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में नीतीश कुमार से सवाल किया कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गरीबों की जमीन पर कब्जा कर लिया है, क्या अब आप गठबंधन तोड़ेंगे। तेजस्वी ने इसके बाद अब तक दर्जन भर से अधिक ट्वीट्स इस मुद्दे पर किए हैं, जिनमें निशाने पर गिरिराज सिंह से ज्यादा नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी की पार्टी के प्रवक्ता और राजद विधायक अख्तारुल इस्लाम शाहीन कहते हैं,
बिहार के मुख्यमंत्री से राष्ट्रीय जनता दल का यह सवाल होगा कि उन्होंने एक एफआईआर के आधार पर जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पे हुआ था, उस आधार पर नैतिकता का हवाला देते हुए उन्होंने गठबंधन तोड़ने का काम किया। आज भाजपा के एक बड़े नेता पर एक गरीब के जमीन को छीनने का आरोप लगा, न केवल आरोप लगा बल्कि एफआईआर हुआ है। इस आधार पर भी उन्हें अगर नैतिकता है तो गठबंधन तोड़ना चाहिए।
गिरिराज सिंह ने भी ट्वीट कर तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट किया कि जमीन फर्जीवाड़े की पहली जानकारी उन्हें तेजस्वी से ही मिली, ऐसा लगता है कि इसके आर्किटेक्ट वही हैं, जबकि प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बारे में उन्होंने कहा है कि एफआईआर के मेरिट पर जानकारी के अभाव में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कानून का हमेशा सहयोग करूंगा। जबकि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार का कहना है कि गिरिराज और तेजस्वी का मामला अलग अलग है।
ये जमीन के स्वामित्व का विवाद है, इसके आधार पर अगर तेजस्वी यादव जी राजनीति का एजेंडा सेट कर रहे हैं तो वह सवाल नहीं है, लेकिन अगर वह संपत्ति का विवरण नहीं दे दिया है तो ये अपराध हो सकता है। इसलिए तेजस्वी यादव जी, आपके जैसा कंपनी ट्रांसफर, शेयर ट्रांसफर, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करना
वो कम से कम ऐसे मामले नहीं है।
जदयू प्रवक्ता ने गिरिराज सिंह से यह अपेक्षा जरूर जताई है कि वे इस मामले में तथ्यों के साथ सामने आएंगे। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
राजस्थान की राजनीति पर एक बार फिर देश की नजरें हैं। हाल ही में वहां लोकसभा की 2 और विधानसभा की 1 सीट पर उपचुनाव हुए और तीनों ही सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। विधानसभा चुनाव से करीब 8 महीने पहले मिली इस जीत को कांग्रेस ने अपनी वापसी की खिड़की की तरह पेश किया और जीत का सहरा बांधा प्रदेश के नौजवान पार्टी प्रमुख सचिन पायलट के सिर। कुछ घंटे पहले सचिन पायलट का साक्षात्कार किया हमारे सहयोगी इकबाल अहमद ने और सबसे पहले यही पूछा कि उन्हें इस जीत की कितनी उम्मीद थी।
जी, आमतौर पर जो उपचुनाव होते हैं ज़्यादातर जो सत्ताधारी दल होता है उसके पक्ष में जाते हैं और राजस्थान में तो पिछले 40 सालों में जब भी लोकसभा के उपचुनाव हुए हैं तब जो सत्ता पक्ष वाली पार्टी होती है वो चुनाव जीती है। लेकिन इस बार जनता में भारी आक्रोश था, वसुंधरा जी की सरकार को जनता ने नकारा है और कांग्रेस का जो स्टैंड रहा है अलग अलग विषयों पर उसको जनता ने समर्थन किया है। हम लोग जीते हैं, भारी अंतर से जीते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि लोकसभा के तमाम विधानसभा के जो क्षेत्र हैं, 8 विधानसभा होते हैं एक लोकसभा में, हम लोग हर विधानसभा में लीड किए हैं और ग्रामीण क्षेत्र में बढ़त मिली है। साथ ही जो अर्बन वोटर है, जो शहरी मतदाता है, उसने भी बढ़ चढ़कर कांग्रेस को पूरा आशीर्वाद दिया है ये जीत। लेकिन इस जीत से इकबाल साहब, हम लोग बड़े विनम्रता से जीत को स्वीकार कर रहे हैं और दुगनी शिद्दत से, दुगनी मेहनत से अब संकल्प लिया है कि हम अगले आने वाले 8 महीने में, क्योंकि विधानसभा के चुनाव 8 महीने के बाद हैं, तो दुगनी ताकत से अब जनता के बीच में और मेहनत करेंगे।
अब थोड़ी सी बात राष्ट्रीय राजनीति की कर लें। राहुल जी अध्यक्ष बन गए, आपने सोनिया जी की अध्यक्षता में भी काम किया, मंत्री रहे आप, अब ये एक जनरेशन चेंज हो रहा है। आपको लगता है कि दोनों के काम करने के तौर तरीकों में कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेगा?
कि हर अध्यक्ष की एक अपनी व्यक्तिगत विजन होती है और होनी भी चाहिए, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका भी अलग है। मूल सिद्धांत वही हैं, इंटेंशन ऑब्जेक्टिव वही है, देश सेवा का भाव सभी कांग्रेसियों में है, लेकिन राहुल जी का अलग काम करने का तरीका है। और जैसा आपने देखा, चाहे मोदी जी हो चाहे भाजपा हो, कठोर और कठिन सवाल पूछने में कभी हिचकते नहीं हैं। तमाम अटैक्स के बावजूद भी राहुल गांधी अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं और राहुल गांधी जी के एक प्रचार से जो ऊर्जा आई है कांग्रेसियों में, वो आपको देखिए गुजरात चुनाव में देखा है आपने और ये बाय इलेक्शंस में आपने देखा कि जनता ने पसंद किया है कि राहुल गांधी जी के विजन ये है कि सबकी पार्टी हो, अनुभवी लोग भी हों, नौजवान लोग भी हों और सब लोग स्टेक होल्डर हों कांग्रेस में और भारत के विकास में, उस तरह की परिकल्पना कर आगे बढ़ रहे हैं।
लेकिन बावजूद उसके जो एक चुनावी नैरेटिव होती है, एक छवि का मसला होता है, क्या अभी भी आपको लगता है इमेज का इशू अभी भी लगता है कि वो है या उसे राहुल गांधी बाहर आ चुके हैं?
कि जनता को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाना है, ये तो पब्लिक को निर्णय करना है कि 4 साल पहले वो बेहतर थे या आज बेहतर है। हमारी सरहद पहले ज्यादा सुरक्षित थी या आज ज्यादा सुरक्षित है? हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पहले ज्यादा थी या अब कम है? राहुल गांधी जी पे दुनिया भर के लोगों ने अटैक किया है और सोशल मीडिया पे बहुत टारगेट उनको किया गया, क्योंकि बीजेपी जानती है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को अटैक करो और कांग्रेस अपने आप कमज़ोर होगी। लेकिन बीजेपी ने भी 4 साल बाद अपनी रिपोर्ट कार्ड देने की बजाय कांग्रेस को कोसना ही अपना एक फोकल बना रखा है, वो कोई नैरेटिव नहीं है। आप सत्ता में आने के बाद भी कांग्रेस को दोष देते रहो, अरे भाई 4 साल में आपने क्या किया है ना, पहले ये बताइएगा, वो बताने से इनकार करते हैं और सारे टाइम वो UPA को और कांग्रेस को और राहुल गांधी जी को कोसने में लगाते हैं। तो ये बचाव मुद्रा में है और जितना जो ज़्यादा चिल्ला के बोलता है उतना ही उसका कमज़ोर उसका तथ्य और तर्क होता है, ये बात आप जानते हैं। इसलिए पब्लिक बहुत समझदार है, देश की जनता समय पर निर्णय करेगी। हमें लग रहा है कि 19 में जो चुनाव होंगे उसमें एक रेनबो कोलिशन बनेगा, कांग्रेस के नेतृत्व में लाइक माइंडेड पार्टी साथ में आएंगी और बीजेपी के अपने एलाइज मान नहीं रहे हैं। भाई आज शिवसेना ने पल्ला झाड़ लिया है, TDP रोज धमकी दे रही है, तो जो अपने एलाइज को नहीं चला पा रहे हैं वो विरोधियों से कैसे संवाद कर सकते हैं? वो जनता को संतुष्ट कैसे करेंगे जब आपके खुद के NDA के एलाइज ही आप लोगों से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं?
ये थे कांग्रेस नेता सचिन पायलट। उत्तर प्रदेश में इस बार बोर्ड परीक्षाएं बेहद सख्त माहौल में हो रही हैं। परीक्षा केंद्रों में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, संदिग्ध परीक्षा केंद्रों को बंद कराया गया है। उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा समेत प्रदेश भर में उड़न दस्ते परीक्षा केंद्रों पर छापा मार रहे हैं। आज परीक्षा का 3रा दिन है और इस सख्ती का नतीजा ये हुआ है कि अब तक 6.25 लाख छात्र छात्राएं परीक्षा देने नहीं आए। हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा ने UP के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से बात की और पूछा कि सख्ती को सरकार क्यों जरूरी समझती है।
ये एक दुखद पहलू था कि दूसरी तरफ एक परीक्षार्थी जगह दूसरा परीक्षार्थी बैठे, एक नकल का तरीका, और सबसे आश्चर्यजनक ये होता था कि एक परीक्षार्थी जो मेधावी है वो परीक्षा देता था उसको टारगेट करके उसकी कॉपी का ऊपर का पन्ना बदलकर नीचे जो कम योग्य अभ्यर्थी है उसका पन्ना लगा देना, और से एक भारी रकम को वसूल करना, कमरों में वीआईपी कक्ष बनाए जाते थे, सेंटर दूर बना के और वहाँ वीआईपी लोगों को बैठाकर उनकी परीक्षा की कॉपी लिखी जाती थी, इस प्रकार की शिकायतें रही।
सवाल ये भी उठ रहा है कि ये सुधार बिल्कुल सही सुधार है, लेकिन सख्त बहुत ज्यादा है, खासकर ऐसे प्रदेश में जहाँ छात्र जो है एक दूसरे माहौल में परीक्षाएं देते रहे हैं। जो
किसी सेंटर का मेरा आपसे अनुरोध होगा, आप किसी सेंटर में जाके बच्चों से पूछिए, आपको हंसते और खुशी जाहिर करते हुए बच्चे दिखे। जो चेकिंग में दस्ते जाते हैं उसमें एक व्यक्ति सही सीधे जाता हो, कहीं चेकिंग की जरूरत ही नहीं पड़ रही। बच्चों को किसी प्रकार की डांट, किसी प्रकार का उनपे उत्पीड़न, इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया ना हो, इसके सख्त निर्देश हमारे हैं।
मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है साबित करने के लिए, लेकिन ये कहा जाता रहा है कि पिछली कुछ सरकारों के दौरान जो परीक्षाएं हुई उनके बाद बच्चे बहुत अच्छे नंबर ला पाए, और अभी जो ये बच्चे बहुत सख्त माहौल में परीक्षा दे रहे हैं ये शायद उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आखिर में जब आपके ही महक में मेरिट बनाएंगे तो उनके ये 10वीं 12वीं के नंबर वहाँ देखे जाएंगे।
ये सवाल उन लोगों के होता है जो परीक्षक के कापी जांचने पर कोई आशंका करते हैं। मैं मानता हूं कि पिछली बार भी काफी सही जांची गई होगी और अभी भी ये जो अच्छे लिखे होंगे उनको अच्छे नंबर मिलेंगे, उसमें हम लोगों ने परीक्षकों को कापी के बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं दिए।
कुछ बच्चे या एक युवाओं का वर्ग इससे नाराज भी हो सकता है, क्या आप चुनावों में उनकी नाराजगी उठाने के लिए तैयार हैं?
नहीं, देखिए हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से अगर देखते तो प्रधानमंत्री जी विमुद्रीकरण करके लोग पैसा दे के वोट लेते थे, अभी प्रधानमंत्री जी ने पैसा निकाल कर वोट लिया है, आप समाज को इतना खराब क्यों माने?
चलते चलते आप मुझे ये बता दीजिए अब तक क्या आंकड़ा आपके पास है, कितने बच्चों ने कुल परीक्षा छोड़ी है?
देखिए अभी सुबह की पाली आज की उसमें भी लगभग 1,00,000 लोगों ने छोड़ा है और अभी द्वितीय पाली का रिजल्ट आना बाकी है। 5,05,000 कल विद्यार्थियों ने छोड़ा था, तो अभी सुबह की पाली तक अगर हम मान लें तो लगभग 6,00,000 के आसपास विद्यार्थी आज की तारीख तक नहीं आए हैं। और ऐसा नहीं है कि इसी बार हुआ हो, पिछले बार भी लोगों ने छोड़ा, पिछली बार भी लगभग 5,00,000 लोगों ने परीक्षा नहीं दी थी, क्योंकि हम लोग जब सरकार में आए थे तो हमने शुरुआत करा था और उसमें भी सख्ती करी गई थी।
ये थे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा। अब वक्त है आपकी राय का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और
मैं हूँ इंदु पांडे, मेरा भी नमस्कार।
इंदु पांडे का भी नमस्कार, और हमारे तमाम श्रोताओं का स्वागत है इस कार्यक्रम में। चिट्ठियों से शुरुआत करते हैं आज,
और ये हमारे पास प्यारी सी चिट्ठी है आचार्य रूपाराम नामा की, जिन्होंने लिखा है राजस्थान बाड़मेर से। लिखते हैं कि यदि कोई बीबीसी का नियमित श्रोता होता है तो क्या फर्क पड़ता है, बीबीसी बिना रस्सी के ऊंट की तरह चल रही है आजकल।
भाई आचार्य रूपाराम जी, आप बीबीसी को बिना रस्सी के ऊंट की तरह क्यों मानते हैं, पहले तो ये बताइए क्या उन्होंने लिखा है।
लिखा है कि भारत के जनतंत्र की भावनाएं अभिव्यक्त करने का कर्तव्य नहीं निभा रही ईमानदारी से, मात्र मोदी की तुलनात्मक बातें कहकर बीजेपी की मजबूती करना ठीक नहीं है, होश में आए बीबीसी तो अच्छा होगा।
बीजेपी की मजबूती करना ठीक नहीं है, देखिए अब ये अलग तरह का आरोप हम पे लगा है। अभी तक आरोप ये लगता था कि हम बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं, तो ये तो बात हुई, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना, लेकिन आप पुराने श्रोता हैं, आपको अंदाजा होगा तहे दिल से कि हम ऐसे नहीं हैं।
बिल्कुल। और अब हम मेल लेते हैं, वसुतुल्ला खान की डायरी के बारे में लिखा है अर्जुन दान चारण कर्मावास बाड़मेर राजस्थान से। लिखते हैं कि वसुतुल्ला खान की डायरी झकझोरने वाली थी, दोनों तरफ एक से हालात हैं जो डरावना है।
तो इसी को तो वसुतुल्ला खान अपनी डायरी को इसी विषय पर केंद्रित रखते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या क्या होता है। आपको पसंद आई डायरी तो बहुत अच्छा लगा।
और ये हमारे पास मेल है प्रदीप कुमार का, रंजीतपुर जिला सीतामढ़ी बिहार से। लिखते हैं कि मैं बीबीसी हिंदी का 25 साल पुराना श्रोता हूं और अब मैं टेलीविजन पर भी कार्यक्रम देखता हूं।
भाई वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
और इनको मोहनलाल शर्मा की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है।
मोहनलाल शर्मा की आवाज़ हमें भी बहुत अच्छी लगती है, और आगे इन्होंने विदित जी और सारिका जी के बारे में भी लिखा है। भाई आप तो हमारे बीबीसी परिवार के लगता है बहुत पुराने सदस्य हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी।
और बिहार मुजफ्फरपुर से लिखा है आदित्य कुमार ने कि पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे प्यार में,
पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे प्यार में,
किसी और के बारे में सोचने का मन ही नहीं करता।
ये लगता है हमारे बारे में सोचते हैं, बीबीसी के बारे में सोचते हैं। नाम आपने बताया आदित्य कुमार
जी,
कहाँ से लिखते हैं?
ये बिहार से लिखते हैं और दुनिया जहान की बात कर रहे हैं।
मुजफ्फरपुर दामू चौक बिहार से, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के छात्र भी हैं, तो सुनते रहिए साहब।
और ये हैं हर्ष शर्मा मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ, बीबीसी में जॉब के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, कृपया तरीका बताइए।
अच्छा, ये बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण चिट्ठी लिखी है हर्ष जी, हर्ष शर्मा साहब। हमारे बहुत सारे श्रोता जो नौजवान श्रोता हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो जानना चाहते हैं कि बीबीसी के साथ कैसे जोड़ा जाए, बीबीसी में काम कैसे हम कर सकते हैं। इसका बहुत आसान तरीका है, आप गूगल करेंगे तो बीबीसी करियर्स की एक वेबसाइट है, उसमें जाके अपना नाम रजिस्टर करा लीजिए, अपना ईमेल वहाँ दे देंगे आप, तो आपको जब भी कोई वैकेंसी होगी, जब भी कोई पद निकलेगा तो आपको अलर्ट भेजा जाएगा। उसमें आप अप्लाई कीजिए, फिर एक लिखित टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, हम सब उसी के ज़रिए आए हैं, तो जो भी बीबीसी से जुड़ना चाहें इस प्रक्रिया से होके गुजरना पड़ता है।
और अश्विनी कुमार जिला करनाल हरियाणा से लिखते हैं कि इन्हें वसतुल्ला खां की डायरी बहुत पसंद है, जिस तरह से आसमा जहांगीर ने एक बच्चे को बचाने में तत्परता दिखाई, काबिले तारीफ है।
जी बिल्कुल, आसमा जहांगीर का नाम पाकिस्तान में ही क्या, बहुत दुनिया के तमाम हिस्सों में लोग उनको जानते हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं वो पाकिस्तान की, और वसत साहब की तो खैर बात ही क्या, वसत तो वसत ही है।
बिल्कुल। और हिरणी दरभंगा बिहार से मुकुंद कुमार झा लिखते हैं कि मैं 12 साल की उम्र से बीबीसी सुन रहा हूं और मैं मोबाइल ऐप के जरिए सुनता हूं और आप लोगों की आवाज़ें कान में मिश्री घोलती हैं।
अरे वाह, कान में मिश्री घोलती हैं भाई, वाह, बहुत बहुत। आपने जो ये मुहावरे का इस्तेमाल किया है मुकुंद कुमार झा जी, इससे तो बिल्कुल एकदम माटी की गंध आती है, ऐसी ही लिखते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा।
इंदौर मध्य प्रदेश से पूर्णचंद उपाध्याय ने कहा है कि भाई आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, खासतौर पे मोहनलाल शर्मा बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं।
बिल्कुल, ये बात आपने सही कही।
और इनका सुझाव है कि बहस के लिए रोजाना अलग से एक घंटे का कार्यक्रम होना चाहिए।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी कम निकले। तो आप समझ ही गए होंगे पूर्णचंद्र उपाध्याय जी कि ख्वाहिश तो हमारी भी है कि हम एक घंटा क्यों, हम 24 घंटे आपके साथ जुड़े रहें, आपके करीब रहें, लेकिन ये मुमकिन नहीं है फिलहाल, तो इसलिए इस बारे में तो अभी क्षमा चाहते हैं।
और ये हैं एहसान असगर साहब, रजनीश कुमार इन दिनों बहुत अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इनका कहना है कासगंज से उनकी रिपोर्ट अच्छी लगी, 24 घंटे के न्यूज़ चैनल तो आग में घी का काम कर रहे हैं, काश वो भी भाईचारे की बात करें।
ये हमारी ख्वाहिश भी है कि जहां पर आग लगी हो वहां पानी छिड़का जाए और जहां लोग प्यासे हों वहां पानी दिया जाए, तो हमारी पत्रकारिता तो कुछ इसी तरह की है और बीबीसी के पत्रकारिता को आप सब लोग जानते हैं। मुझे लगता है कि अब हमारा समय समाप्त हो रहा है, चलते चलते पता बता दें, बीबीसी हिंदी सेवा पोस्ट बॉक्स 3035 नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
अब खेल की दुनिया पर एक संक्षिप्त नज़र, इंदु पांडे मेरे साथ स्टूडियो में हैं, बताएं।
जी, इलीट एशियन गेम्स इवेंट के लिए भारत की बॉक्सिंग टीम इंडोनेशिया रवाना हो गई है। टीम 8 से 18 फरवरी तक इंडोनेशिया में अपना दमखम दिखाएगी, जिसमें भारत के करीब 7 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और हम आपको बता दें कि सभी खिलाड़ी पिछले लंबे समय से राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकेडमी पटियाला इंडिया कैंप में अभ्यास कर रहे थे। और 8 से 9 फरवरी के बीच स्विट्जरलैंड के सेंट मोरिट्स में खेले जा रहे आइस क्रिकेट में पहला मुकाबला सहवाग डायमंड्स और अफरीदी रॉयल्स के बीच खेला जा रहा है। इसमें सहवाग डायमंड्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खो करके 164 रन बनाए। और ये भी हम आपको बताएं कि ये टूर्नामेंट जिसमें कि भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
बहुत शुक्रिया इंदु पांडे। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और प्रमुख विपक्षी नेता खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच के आगे आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की अंतिम सुनवाई शुरू हो गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। सीरियाई सरकार ने राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में स्थित घूटा के सरकार की घेराबंदी वाले पूर्वी इलाके में विद्रोहियों के ठिकानों पर 4th दिन हवाई हमले किए हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने कहा है कि वो फिलीपींस में नशीली दवाओं के कारोबारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान हुए अपराधों की जांच करेगी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन जल्द ही विंटर ओलंपिक के लिए उत्तर कोरिया से आए प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने वाले हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में उत्तर कोरियाई लीडर किम जोंग उन की बहन शामिल हैं। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ दिन भर की ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया राजेश चौहान ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्र ने। तो अब कुलदीप मिश्र को दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। नमस्कार।